समाधि ट्रांस नहीं है, सो इज इट इमोशनल अटेंस, क्या भावनात्मक बातचीत करने है ये? ना, वो भी नहीं है. इज इट एब्जॉर्प्शन इन वन सेल्फ, अपने आप में डूब जाना, अपने आप में खो जाना? नहीं. समाधि, वो भी नहीं है. बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमने समाधि का अनुभव किया है. दैट इज रॉन्ग, दे आर मिस्टेकन. शब्द पे गौर कीजिएगा, समाधि, समाधि. सम का अर्थ है इक्वल माइनस. बुद्धि एक जैसी हो, धी का अर्थ है बुद्धि. जब बुद्धि आपकी एक तरह से हो, दुख में, सुख में, दिन में, रात में, सर्दी में, गर्मी में, हर अवस्था में आपकी बुद्धि की स्थिति एक जैसी हो, उसे कहा गया समाधि. हर हाल में जब आप एक प्रकार से हो, उसे कहा गया समाधि. विचार कीजिएगा, भगवान ने महासमाधि ली है. समाधि में क्या होता है? कहते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जब चल रहे होते थे कहीं पर जा रहे होते, लोग बोलते थे जयराम जी की, कहते हैं जयराम जी की उत्तर देते और समाधि में चले जाते थे, एकदम डूब जाते थे. स्वामी जी श्री कृष्ण, कृष्ण में डूब जाते थे. समाधि का अर्थ है व्हेन योर माइंड इज फ्री फ्रॉम इम्पल्सेस, एजिटेशन, उत्तेजना, बेचैनी, घबराहट, ये चीजें आपके अंदर ना हो. समाधि का अर्थ है व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम ड्यूअलिटी, द द्वैत की भावना समाप्त हो जाए. व्हेन ऑल ड्यूअलिटी इज डिस्ट्रॉयड, द्वैत भाव खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए. असल में समाधि में आपको पता भी नहीं होता कि आप कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं. अनुभव क्या करेंगे आप? आत्मा अपनी प्रभा में खो जाती है. प्रभा का अर्थ है एफल्जेंस. जिस प्रकार सन इज सेल्फ एफल्जेंट, सूर्य प्रकाश के जिसे मांगता नहीं है, वो प्रकाश दे रहा है, प्रकाशित हो रहा है. जब आत्मा अपने आप को प्रकाशित जानने लग जाती है, जब आप परमात्मा में डूब जाते हैं, परमात्मा में तन्मय हो जाते हैं, समाधि इज एन ओशन, जहां पर एक बूंद जल की गिर जाए आपको पता नहीं लगता बूंद कहां गई. आप उस बूंद को खोज के वापस नहीं निकाल सकते. याद आ रहा है मेरे को, कई साल पहले भगवान बाबा ने स्वयं में कहा था, ये स्थान देख रहे हो, यहां पर मेरी समाधि बनेगी. स्वामी स्वयं बता गए थे समाधि कहां बनेगी मेरी. बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए, स्वामी ने कहा था मैं तो 95-96 साल तक जीऊंगा, वो तो 85 साल में चले गया. अभी हम समाधि पे लौट के आएंगे, पहले बात दिमाग में आ गई इसलिए यहां पर आ गया हूं. स्वामी ने घोषणा करी थी कि जब मेरी उम्र 96 साल की होगी, 96 की होगी, तब मैं शरीर त्यागूंगा. हम उस बात को पकड़ के बैठे हैं. लेकिन स्वामी ने यह भी तो बोला था, मैं चाहूं तो कभी भी शरीर छोड़ सकता हूं, मैं चाहूं तो अनंत काल तक जी सकता हूं, ये मेरी इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है. लेकिन वो बात हमें याद नहीं है. आप जानते हैं भगवान बाबा का जन्म हुआ था 23 नवंबर 1926 को, और उन्होंने शरीर त्यागा 24 अप्रैल 2011 को. अर्थात 24 अप्रैल 2011 से लेकर 23 नवंबर 2026 के बीच में 30,834 दिन बने, 30,834 डेज, जो हम वर्ष बोलते हैं ना, जो आजकल की गणना है वर्ष की, हम बोलते हैं न्यू ईयर या वन एनुअल ईयर या फुल ईयर। जब धरती सूर्य की परिक्रमा कर लेती है उसको हम एक साल बोलते हैं, लेकिन एक होता है लूनर ईयर, जब चंद्रमा धरती की परिक्रमा कर लेता है 12 बारी 12 टाइम, उसको कहा गया वन ईयर। चंद्रमा धरती क्यों चक्कर लगाता है, 12 बार चक्कर लगाता है 324 दिनों में। अब 30,834 दिनों को 324 से भाग करें, डिवाइड करें, क्या बनेगा, 95.16 ईयर्स। और प्रेगनेंसी का टाइम भी ले लें, 294 डेज की प्रेगनेंसी थी, दैट इज 0.9 ईयर्स। इन सब को जमा करें, 95.16 प्लस 0.9 बन गया 96 ईयर्स। लूनर कैलेंडर के हिसाब से भगवान बाबा की उम्र उस वक्त एग्जैक्टली 96 ईयर थी। भगवान बाबा के होठों से निकली ये बात कदापि गलत हो ही नहीं सकती। आप जानते हैं भगवान बाबा हॉस्पिटल में 28 डेज तक थे, 28 दिनों तक। क्या हुआ, किडनी फेलियर, डायलिसिस में डाल दिया, लीवर में समस्या आ गई, जॉन्डिस हो गया, हार्ट में लगाया पेसमेकर। ये सब एक दिन में नहीं हुआ था, धीरे धीरे हुआ था। कभी किसी ने सोचा भगवान बाबा जो शरीर की तकलीफ गुजर रहे थे वो क्यों हो रहा था? ना जाने कितने भक्तों की तकलीफों को उन्होंने अपने अंदर छुपा लिया था। सत्ताईस अप्रैल 2011 को साईं कुलवंत हॉल में पहली बारी, भाइयों बहनों जरा ध्यान से सुनिएगा, 27 अप्रैल 2011 साईं कुलवंत हॉल में पहली बार वहां पर गरुड़ देखा गया। गरुड़ किसका वाहन है? भगवान विष्णु का। जहां तक मेरी याददाश्त है 27 अप्रैल को ही भगवान बाबा को या उनके शरीर को पुट्टपर्ती में साईं कुलवंत हॉल में दफनाया गया था। उसी दिन वहां पर गरुड़ आया था। विचार कीजिएगा, गरुड़ परमात्मा को अपने साथ लेकर गया। समाधि दो प्रकार की होती है, सविकल्पा समाधि, निर्विकल्पा समाधि। सविकल्पा समाधि में क्या होता है, एक होता है ज्ञाता, जाने वाला, नोअर, एक होता है नोइंग, जानकार, जानते हुए। जानने वाला कोई चीज को जान रहा है, अगला शब्द आता है नॉन, यानी जान जाना, ज्ञात हो जाना। ये तीन अवस्थाएं हैं सविकल्पा समाधि की, नोअर, नोइंग, नॉन। ज्ञाता, जानते हुए, ज्ञात हो जाना। अर्थात इसमें क्या होगा, नोअर इज प्योर कॉन्शियसनेस, चेतना है, नोइंग भी चेतना है, नॉन भी चेतना है। जब जब सब चीजें समझ आ जाए, देयर विल बी नो एजिटेशन, नो मेंटल एक्टिविटीज, ऑल आर वन। निर्विकल्पा समाधि में कोई अवस्था नहीं है। निर का मतलब है विदाउट, वी करता है टू चेंज, बदलना, कल्प करता है एयंस ऑफ टाइम, जो हजारों सालों तक बदले ही नहीं, एक जैसा रहे, उसे कहा गया निर्विकल्पा समाधि। महासमाधि का अर्थ है जब व्यक्ति अपने शरीर को संयम जानते हुए छोड़ दे। बात समझ रहे हैं आप? समाधि के बैठे हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं, अचानक आप ऐसी अवस्था में पहुंच गए, आप अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे, आपको समय का पता नहीं लगा, फिर आपके यहां खुल गई, अचानक वापस आ गए आप, वो समाधि है। लेकिन समाधि में अब ये भी कह सकते हैं कि आदमी जाग रहा है, सो रहा है, वेकिंग स्टेट में है, डीप स्लीप में है, या स्लीप और ड्रीम स्टेट में है, या डीप स्लीप स्टेट में है। जैसे आप जाग रहे हैं, आपको चेतना है आपका, आप जानते हैं क्या हो रहा है, आप अवेयर है, आप सो रहे हैं, आपको सपना आ रहा है, तब भी आप कुछ तो दिख रहा है, कुछ देख रहे हैं, आप को अनुभव कर रहे हैं। जब आप डीप स्लीप में, आपका पता भी नहीं लगता, सुबह उठते कहते हो आई हैड ए वेरी गुड स्लीप, आपका पता नहीं लगा सुबह कब हो गई, जहां पर मन नहीं था उस समय, कोई चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन वो समाधि नहीं है, वो नींद है। जब आप बैठे बैठे समाधि लगाते हैं, उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, वहां आपको आनंद की अनुभूति होती है। आनंद शब्द पे गौर कीजिएगा, दुख का विपरीत शब्द है सुख, सर्दी का गर्मी, दिन का रात, लेकिन आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है। आप आनंद में होते हैं, वो समाधि है। लेकिन निर्विकल्पा समाधि, सभी कल्पा जो है आपके मुझे बताया नो और नोइंग नॉन, लेकिन निर्विकल्पा में आपको हर वक्त इस चीज का ज्ञान रहता है कि आप चेतना है, नथिंग एल्स, यू आर जस्ट प्योर कॉन्शियसनेस एंड नथिंग एल्स एट ऑल। लेकिन महासमाधि एक ऐसी अवस्था है जब आप अपने शरीर को संयम छोड़ते हैं, विचार कीजिएगा। इसलिए हम समाधि के दर्शन करने जाते हैं, ताकि समाधि के दर्शन करते करते हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हमारे को भी समाधि लेनी चाहिए, अर्थात हमारी बुद्धि सम हो जाए, एक प्रकार से हो जाए, हर अवस्था में, दुख में, सुख में, हर जगह एक जैसे हो जाए। विचार कीजिएगा, समाधि दर्शन से कम आप अपने मन के अंदर एक इक्वल माइंडनेस लाने का प्रयास करते हैं, उसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम, बैलेंस जैसे होता है, संतुलित रहना। हम वो कैसे समाधि कैसे लें भाई, बड़ा डिफिकल्ट लगता है ऐसे कंडीशन में, जिस प्रकार के संसार में हम रह रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला, अर्जुन फॉलो माय कमांड्स, डिस्चार्ज योर ड्यूटीज व्हाइल ऑल द टाइम थिंकिंग ऑफ मी। अर्जुन मेरे बातों पे ध्यान दो, उनको फॉलो करो, उन पे चलो, और हर वक्त तुम्हारा ध्यान मुझ पे रहे, बस इससे आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बात यह है, 8 साल पहले भगवान बाबा ने शरीर छोड़ा, वो कहाँ है, कहाँ गए, विचार कीजिएगा। 23 नवंबर 1980 को एक कोई एडिटर थे मेरे ट्रिब्यून के राज चंगापौर ने बाबा से पूछा, बाबा व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या होता है? स्वामी बोले लाइफ एंड डेथ आर टू द बॉडी बट आई एम नॉट द बॉडी। जन्म और मृत्यु शरीर को मिलती है, शरीर के लिए होती है, आत्मा के लिए नहीं होती है। मैं तो आत्मा हूं। बड़े से भक्त प्रश्न करते हैं कि बाबा कहां है? स्वामी कहते थे आई एम ओमनीप्रेजेंट ओमनीसेंट ओमनीपोटेंट, मैं सर्वत्र हूं, सर्वशक्तिमान हूं, सर्वज्ञानी हूं, सब जगह हूं। मैं आपसे बोलता हूं स्वामी कहां नहीं है। किसी ने अच्छा बोला, स्वामी नेवर लीव्स अस, स्वामी लिव्स थ्रू अस। स्वामी कभी हमें छोड़ते नहीं है, हमारे द्वारा जीते हैं। बाबा से पूछा गया था स्वामी वे आर यू, कैसे मैं हृदयवासी हूं, अपने भीतर झांक के देखो मेरे को पालोगे। विचार कीजिएगा। प्रश्न ये है कि अगर बाबा का शरीर आज नहीं है तो क्या हम अपना जीवन रो रो के गुजारें? नहीं, उनके बताए हुए रास्ते को एडॉप्ट करके। उनके दर्शाए हुए रास्ते पे चलकर, उनकी बातों को समझकर अपने जीवन में उतार के। हजारों किताबें हमने पढ़ ली बाबा के ऊपर, हमने हजारों डिस्कोर्सेस सुन लिए, प्रवचन सुन लिए, भाषण सुन लिए, हजारों वीडियो क्लिप देख ली यूट्यूब में, हजारों चर्चाएं कर ली लोगों के साथ, लेकिन फिर भी आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं। लोगों से पूछते हैं भैया अब क्या करें, हाउ डू आई टॉक टू स्वामी? मैं पूछता हूं आपने प्रयास किया उनसे बात करने का? डू यू एवर मेक एन अटेम्प्ट? स्वामी हृदयवासी हैं, आप केवल दो क्षण के लिए, दो पल के लिए आंखें बंद करके बैठ जाना है, अपने भीतर जाके अपने आराध्य देव को उनका आवाहन करना है। हालांकि वे वहां पर हैं, तब भी आवाहन कीजिए, पुकारिए। स्वामी ने क्या बोला? स्वामी ने कहा इफ यू थिंक ऑफ मी फॉर 11 सेकेंड्स आई विल कम देयर। इतना बड़ा आश्वासन दे दिया, अगर तुम केवल 11 क्षण के लिए, 11 पल के लिए, 11 सेकेंड के लिए मुझ पे ध्यान लगाओ, मैं वहां आ जाऊंगा। अब जरा आपको सोचना होगा, 11 सेकेंड एक मिनट भी नहीं है, आधा मिनट भी नहीं है, एक चौथाई मिनट भी नहीं है, इवन नॉट द 25% ऑफ द मिनट। 11 सेकेंड के लिए अगर आपका ध्यान पूर्णता से परमात्मा पे लग जाए, स्वामी पे लग जाए, मेरे आराध्य देव आपके सामने होंगे, आपको उनकी आवाज सुनाई पड़ेगी, आपको आभास होगा। लेकिन बिना प्रयास के नहीं होता भाई। जरा आप एक बात सोचिएगा, कहते हैं जैसे हम इवॉल्व हुए ना, हम पहले पत्थर थे, पत्थर से हम मिट्टी रेत बन गए होंगे शायद, धीरे धीरे हम जल के जंतु बन गए, बाहर आ गया, पेड़ पौधे बन गए। हो सकता है पेड़ पौधे पहले बने हो, बाद में जल जंतु बने हो। चलते चलते वानर बन गए, चलते चलते अलोंग द लाइन ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स इवॉल्व होते होते मानव का शरीर मिल गया। कुत्ता कोई कर्म नहीं कर सकता, उसे कर्म का फल नहीं मिलता। बिल्ली कोई कर्म नहीं करती, उसे कर्म का फल नहीं मिलता। कोई भी पक्षी कर्म नहीं कर सकता। आपने पक्षियों को देखा कैसे वो घोंसला बनाते हैं, उड़ के आते हैं, घास का टुकड़ा लाते हैं, रख देते कोने में। आज से 20 साल पहले भी वैसे ही घोंसला बनाते थे, आज से 100 साल पहले भी वैसे घोंसला बनाते थे। आप इंडिया में हैं या फिजी में हैं, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में, कहीं पर दुनिया में हो, हर जगह पक्षी वैसे ही घोंसला बनाता है। नो चेंज इन टेक्निक। हजार साल पहले भी वैसे ही घोंसला बनाता था, आज भी ऐसा बनाता है पूरे संसार भर में, क्योंकि भगवान ने उनको एक सीमित बुद्धि दी है, एक लिमिटेड नॉलेज दिया। लेकिन मानव एक ऐसा पशु है, मानव एक दो पांव वाला ऐसा पशु है जिससे चार पांव वाले पशु भी डरते हैं। मानव एक ऐसा पशु है जिसके पास बुद्धि है, जिसका विकास होता है, वो कहां से कहां जा सकता है? जरा विचार कीजिएगा, सोचिएगा पल भर, दो पल के लिए। सो इस जन्म काल में आप इतने भाग्यशाली हैं, आप मेरे आराध्य देव भगवान बाबा को जान पाए हैं, एक अवतार के दर्शन किए हैं आपने, एक अवतार की गाथा को सुना है, एक अवतार को देखा है, एक अवतार के बारे में पढ़ा है। अगर इतने समय इस स्थिति में आने के पश्चात भी, एट द पॉइंट ऑफ टॉप एलिवेशन पे आने के पश्चात भी अगर हम अपना उद्धार नहीं कर पा रहे हैं, फिर कभी नहीं कर पाएंगे। इट विल नेवर हैपन। सो उस महासमाधि के आराधना उत्सव के समय, ऐसे पर्व पर अपना ध्यान केवल परमात्मा पे केंद्रित कर दे, बाकी सब भूल जाए। जस्ट लुक विद इन योर सेल्फ, जस्ट वॉच विद इन, लुक विद इन, टॉक टू द गॉड रिजाइडिंग विद इन, आपका कल्याण होगा। जय श्री साईं राम।